أين؟
تخوايا كمان
بيكوش تكينا
كجو تجاو
تكينا كجتے آنکھو اے سہارا ہے. السلام علیکم سامعین, پروگرام ہے کچھ تو کہیے. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز عزیز, پروڈیوسر ہماری گلرخ ہیں اور انجینئر ہیں کرٹس بائنم. ہماری آج کی مہمان, میں صرف یہ کہہ سکتی ہوں کہ کبھی کبھی بہت ایسے لمحات آتے ہیں جب مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس پروگرام کو عزت بخشی کسی کے آنے نے, اور ایسے ہمارے بہت سے مہمان ہیں. لیکن جب آپ ہماری آج کی مہمان سے ملیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں نے خاص طور سے ان کے لیے کیوں کہا اس بات کو. تو لیجیے ایک جھلک سنتے ہیں ان کی آواز کی.
اس نے میرا چہرہ بدلا ہے, دل نہیں. اس نے میرے فیس پہ ایسڈ ڈالا ہے, میرے سپنوں پہ نہیں. میری لائف ہے, مجھے دوبارہ ایک لائف ملی ہے, میں اس کو کیوں ویسٹ ہونے دوں. میں بھی ایک انسان ہوں, میرے بھی کچھ سپنے تھے. کیونکہ میں ایک لڑکی ہوں. ہمارے دیش میں لڑکیوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اس کے سپنوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے, میرے بھی سپنوں کی نہیں تھی. 2005 کی بات ہے, میرا ایک سپنا تھا کہ میں سنگر بننا چاہتی تھی. لیکن ایک لڑکا تھا جو 32 ایئرس کا تھا اور میں اس ٹائم پہ 15 ایئرس کی تھی. وہ لڑکا مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا. جب میں نے اس کو منع کیا تو اس نے کیا کیا, پورے 10 مہینے تک اس نے مجھے کنٹینیوس پریشان کیا لگاتار. اسکول جاتی تھی, اسکول سے جب واپس آتی تھی وہ میرا ویٹ کرتا تھا راستے میں. وہ کچھ بھی بولتا تھا, وہ مجھے تھپڑ مار دیتا تھا, کچھ بھی اس کے من میں جو آتا تھا وہ کرتا تھا. کیونکہ اسے پتا تھا کہ میرا ایک سپنا ہے, کیونکہ اسے پتا تھا کہ میں اپنے گھر والوں کو نہیں بول سکتی ہوں. کیونکہ اسے پتا تھا اگر بولوں گی تو میرا اسکول چھڑوا دیا جائے گا, میرے سپنے کو مار دیا جائے گا.
تو سمین ہمارے ساتھ ہیں لکشمی نئی دہلی سے اس وقت. لکشمی, میں کیا بتاؤں آپ کی, جب بھی آواز سنتی ہوں اتنی آپ کی پیاری آواز, اتنی خود آپ پیاری ہیں, اور پھر آپ کے ساتھ جب تصویریں دیکھتی ہوں, آپ کی ایک ننی سی پری جو بھائی ہے, اب تو شاید 2.5-3 سال کی ہو گئیں, وہ تو خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو اس پروگرام میں. اور کیسا لگا, آپ نے آپ کی پرانی تقریر تھی اس سے ایک ٹکڑا لیا تھا میں نے سن کے,
بہت اچھا لگا. پہلی بات تو یہ تھینک یو سو مچ کہ ہم اتنے دور ہیں لیکن اس کے باوجود بھی بہت پاس ہیں.
درست, بالکل صحیح.
اور بہت سارے لوگ ہم لوگوں کو سنتے ہیں, ان کو بہت تھینک یو کہ آج وہ ہم دونوں کی ہی آواز سن رہے ہیں. پھر میں یہ نہیں کہوں گی, آپ کی آواز تو مانا روز سنتے ہیں, تو آج پھر بھی ہم دونوں کی آواز سن رہے ہیں وہ. اور آپ نے مجھے سرپرائز دے دیا, یہ بات چلا کے جب میں نے ٹیڈ ایکس میں گئی تھی.
جی جی,
اور ٹیڈ ایکس کی ہی بات ہے, یہ جے پور کا ٹیڈ ایکس ہے میرا, اور جب یہ بات میں نے کہی تھی تو میرے کو سرپرائز مل گیا کہ آپ نے یہ بات مطلب چلائی. اور بہت سارے لوگوں کو بہت اچھی لگتی ہے یہ بات, اور جو صحیح معنوں میں پہلی چیز یہ کہ خوبصورتی جو کہ ہم ہی لوگوں نے مل کے بنائی ہے, کہ خوبصورتی جو ہے وہ صرف لڑکی کا چہرہ ہی ہے, پر اگر صحیح معنوں میں خوبصورتی میرا چہرہ ہوتا تو شاید میں آج آپ میرا انٹرویو نہیں لے رہے ہوتے اور میں آپ کے ساتھ نہیں ہوتی.
میرا خیال ہے کہ خوبصورتی جو ہوتی ہے نا ہر آدمی کی شخصیت میں ہوتی ہے, اور لکشمی تو ایک ایسا خوبصورت پورا میں نقشہ, میں جب آپ کی آواز سنتی ہوں, جب میں آپ کو دیکھتی ہوں, جب میں آپ ایوارڈ لینے یہاں واشنگٹن میں آئیں اور مشیل اوباما نے جب آپ کو ایوارڈ دیا جس پیار سے انہوں نے آپ کو گلے لگایا, میں سمجھ سکتی تھی کہ سارے لوگوں کے دلوں پر جو آڈینس تھے یہاں بیٹھے ہوئے, جو ظاہر ہے آپ نے جیسا کہا سات سمندر پار دونوں ملکوں کا فاصلہ ہے, انڈیا کا اور امریکہ کا, لیکن شاید وہ آپ کے دل میں جھانک سکتے تھے. آپ ایک اتنی بہادر لڑکی ہیں,
तो इसीलिए मुझे थोड़ी सी मैं ये पूछना चाहूंगी कि ये जो ख्वाब छीनने की बात थी कि ख्वाब को मार दिया जाए, आप थी कितनी बड़ी उस वक्त, जब 2005 की बात है ना, जब आपके ऊपर तेजाब
जी
फेंका उस
बिल्कुल,
लड़के ने,
मैं 15 साल की थी।
तो इतनी छोटी बच्ची, फिर आप दो ही बहन भाई, मतलब ये भी नहीं कि कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा खानदान था, तो माँ बाप की पूरी जो तमन्नाएं ख्वाहिशें जुड़ी हुई थी आपसे, तो क्यों डरी, क्यों आप बताने में कि लड़का आपको तंग करता है?
जो कि अभी आपको आपने सुना ही, टेडेक्स में मैंने कहा कि मेरा एक सपना था, और हमारे देश में हमारा परिवार भी आता है, हमारे रिश्तेदार भी आते हैं, हमारे दोस्त भी आते हैं। तो जब भी एक लड़की, सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक लड़की अपने ख्वाबों को कभी अपने अपनों के आगे रखती है, तो अपने उसको सबसे पहले अपने ही उसके सपनों को कुचलते हैं। ये बहुत दुख होता है देख के, अपने ही हिम्मत देते हैं और अपनी ही हिम्मत को खत्म करते हैं। तो वो एक डर था कि मैं एक लड़की थी और मेरा सपना सिंगर बनने का था, और मतलब सिंगिंग डांसिंग इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रखती है परिवार वालों के लिए। अगर देखा जाए तो डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ,
हाँ बिल्कुल
और यही
बिल्कुल,
सारी चीजें बहुत मायने रखती है। और लड़की के लिए जो पेरेंट्स सबसे बड़ा सपना देखते हैं आखिर में, वो होती है शादी। तो उनको लगता है अगर लड़की कितनी भी पढ़ लिख जाए, कुछ भी करवा दे, लेकिन आखिर में होनी तो शादी है, जाना उन्हें अपने ही घर है। फिर कहाँ निकल पाएगी, क्या करेगी, परिवार में बन जाएगी, आगे कुछ रहेगा ही नहीं। तो बस इतना ही था कि अगर मैं अपने परिवार वालों को ये बात बताती कि मेरा ख्वाब ये है और मुझे ख्वाब पूरा करने निकलना है ऐसे, तो वो मेरा सपना कभी नहीं पूरा करते। या तो वो मुझे घर पे बिठा देते, मेरी पढ़ाई छुड़वा देते, और जो एक बचपन से एक परवरिश, वो जो डर है ना, वो एक परवरिश में ही आता है। जो
हाँ
परवरिश होती है एक लड़का लड़की इस तरीके से, वो एक सोसाइटी, अगर माँ बाप ऐसा नहीं करते हैं तो रिश्तेदार करते हैं,
हाँ कोई ना कोई
और साथ
प्रेशर
साथ
हर तरफ से होते हैं,
सोसाइटी भी करता है। जो आपके
बिल्कुल
आस पड़ोस में लोग रहते हैं उनका भी एक दबाव होता है, लड़की है आपकी, लड़की वहां जा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है।
दुरुस्त,
तो टाइम क्योंकि बहुत कम है और जर्नी बहुत लंबी है, तो मतलब बहुत मोटी मोटी ही मैं बात बता सकती हूँ कि मतलब
मैं
बहुत
लेकिन
सारी
एक बात पूछना
प्रॉब्लम।
चाहूंगी आपसे, मैं आपसे सवाल पूछती जाऊंगी ताकि बहुत सारे जो हमारे सुनने वाले पूछना चाहते हैं, आप थी कहाँ उस वक्त, दिल्ली में थी या किसी और जगह थी जब आपको?
बिल्कुल, मैं दिल्ली दिल्ली में ही दिल्ली से ही हूँ मैं, दिल्ली में ही मेरा जन्म हुआ है।
अच्छा
और मैं उस टाइम पे गोल्फ लिंक्स में रहती थी और मैं खान मार्केट की तरफ जा रही थी।
अच्छा
और ऐसा हुआ था कि मेरे परिवार वालों ने मुझसे पूछा कि तुम लक्ष्मी क्या करना चाहती हो, तो मैंने कहा मैं सिंगर बनना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, कुछ और करो, आगे कुछ और बनो। तो फिर मुझे लगा ये लोग ऐसे तो मानेंगे नहीं, क्योंकि मैं रियलिटी शोज देखती थी, तो मुझे लगता था जब वहां से बच्चे अपने घर से भाग के आते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, तो मुझे भी ऐसे ही कुछ करना होगा। तब मैंने 2 महीने की छुट्टियां पड़ने वाली थी स्कूल की, तो मैंने फिर अपने घर वालों को बोला कि 2 महीने का वक्त मतलब है मेरे पास, कहीं मैं बाहर जाने से अच्छा है कि मैं यहीं पे रह के मैं जॉब करना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला जॉब नहीं करोगे आप। तो मैंने कहा आप जिंदगी भर ऐसे ही मुझे अपने साथ चलाते रहोगे क्या,
ये
मतलब
यानी
मुझे
हादसे के
बोलना तक
बाद की
भी नहीं
बात है,
आता।
जब आप पे तेजाब फेंक दिए गए उसके बाद की बात
नहीं
है ये?
उससे, नहीं, उससे पहले की
अच्छा
बात
15 साल
है
की जब आप थी तब आपने, अच्छा तो
जी
आप,
बिल्कुल,
हाँ
कि वो
अच्छा
मैं अपना सपना किसी भी तरीके से पूरा करना चाहती थी,
अच्छा
पर मुझे नहीं पता था कि परिवार तो मना कर रहा है, लेकिन उस सपने में भी कोई और भी बैठा हुआ है, कि उसको भी सारी चीजें पता रहती थी, वो जानता था, वो 32 साल का लड़का था और वो जानता था कि मैं क्या करना चाहती हूँ। परिवार वालों ने बोला चलो ठीक है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जाना खान मार्केट। जॉब करना तो मेन मकसद था ही नहीं, जो मेरा मेन मकसद था कि मैं कोई क्लास ज्वाइन करूं, सीखूं और किसी रियलिटी शो में जाऊं। पर
ठीक है,
15 दिन भी नहीं हुए थे मुझे मुश्किल से, और मैंने जाके अपनी क्लास में बात भी की, उन्होंने कहा 1 तारीख को आप आना। जिंदगी में वो 1 तारीख कभी आया नहीं मेरे। तो उस वक्त मैं, 22 अप्रैल की बात है, मैं हर दिन की तरह सुबह जा रही थी, और 19 अप्रैल की बात है वही 2005 की वो लड़के का मैसेज आता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। मैंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। फिर उसके बाद अगेन मैसेज आता है, अभी और इसी वक्त जवाब चाहिए। मैंने फिर भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। 21 अप्रैल को उसने मुझे कॉल करके कहा कि आप तो आगे कुछ बनना चाहते हो ना, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो। मैंने बड़े प्यार से उसको हाँ बोला। उसने कहा चलो ठीक है, और कॉल काट के अगले दिन मेरा वेट कर रहे थे वो और उनके छोटे भाई की गर्लफ्रेंड, और वो बियर की बॉटल में एसिड लेके आए थे और गिलास लेके आए थे। उन्होंने मुझे देखा, प्रॉपर फॉलो किया। जैसे ही मैं खान मार्केट की तरफ बड़ी मेट्रो स्टेशन के पास, अचानक से आते और मैं उनको देख ही रही थी, और अचानक अच्छा। से आते हैं मेरे फेस पे हाथ मार के मुझे धक्का मारते हैं जमीन पे, और ग्लास में एसिड होता है और वो मेरे फेस में डाल देते हैं। वहीं से मेरी जिंदगी बदल जाती है बहुत बुरी तरीके से,
क्योंकि काफी लोग अटैक थे? उस जगह पर काफी लोग थे जब ऐसा हुआ?
बिल्कुल, आज के अकॉर्डिंग पहले ज्यादा लोग होते थे इसमें, क्योंकि आज मेट्रो स्टेशन बन गया है।
अच्छा।
और वो ग्राउंड ग्राउंड में है, और तब बस स्टैंड था वहां पे, तो ऊपर लोग ज्यादा हुआ करते थे। तब तो मेट्रो स्टेशन था ही नहीं, और मॉर्निंग का टाइम था, ऑफिस टाइम था,
तो किसी ने कुछ नहीं किया फिर उस वक्त जब ये हमला हुआ? तो
नहीं, किसी ने उस टाइम तो कुछ नहीं किया। जब मुझे होश आया, मैं बहुत तड़प रही थी, मुझे बहुत जलन हो रही थी, ऐसा लग रहा था मुझे किसी ने जिंदा आग लगा दिया हो। और उस वक्त फिर मैं जैसे ही 3 बार मेरा कार एक्सीडेंट भी हुआ उसी टाइम पे, पर किसी ने मुझे कोई सपोर्ट नहीं किया। फिर एक अरुण सिंह अंकल थे, उन्होंने दूर से ये सारा हादसा देखा, और अचानक से वो आए, 2 लीटर कोक की बॉटल थी, उसका आधा पानी था, उन्होंने फेस में मेरे पानी डाला, तो वो गले के पास आके, मतलब जो बचा वैसा एसिड था जो पानी से आया, हाँ। वो सीधे गले के पास आके वो जल गया। और उसके बाद PCR बुलाई गई, और मुझे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, तब रास्ते में मैं देख रही थी कि जैसे कि प्लास्टिक की पॉलिथीन को जला दिया जाता है ना, हाँ। इसी तरीके से मेरे चेहरे से और हाथ से स्किन मेल्ट हो रही थी, और मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये मेरे साथ क्या हुआ। और फिर हॉस्पिटल लेके गए, 20 बाल्टी पानी डाला गया, और उसके बाद फिर मेरे पापा है, मुझे पापा ने गले लगाया, तो मेरे पापा की शर्ट जल गई उस टाइम पे,
इतना एसिड था।
बिल्कुल, मतलब 20 बाल्टी पानी डालने के बाद भी उस एसिड का इतना असर था, क्योंकि एसिड का असर जो होता है वो 48 आवर्स तक रहता है, वो आपके हड्डी तक को गला देता है।
लेकिन आपकी हड्डियां महफूज रही या हड्डी तक पहुंच गया फिर वो चेहरे पे?
मेरी हड्डियां महफूज रही हैं।
चलिए, ये भी कोई बहुत बड़ा। और वो आपके जो अंकल आए थे, मेरा ख्याल है एक मौजा ही है कि उनके पास पानी था, उन्होंने धो दिया आपका जल्दी से चेहरा।
बिल्कुल, अगर और पानी होता तो शायद बहुत ज्यादा बच जाता,
बहुत ज्यादा बच जाते।
बिल्कुल,
लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा रोकूंगी, हमारे कॉलर्स भी हैं हमारे साथ, मैं अपने कॉलर से दरख्वास्त करूंगी, आपका नाम मैं अनाउंस कर देती हूँ, उसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, और सिर्फ आप अपने सवाल पूछिएगा, क्योंकि मैं इनसे बहुत सी बातें करना चाहती हूँ और वक्त कम है। जफर इकबाल लोड़का हमारे साथ हैं। जी जफर इकबाल।
अस्सलाम वालेकुम बाजी।
जी वालेकुम सलाम जफर, क्या सवाल है आपका?
जी मैडम से मैं ये अर्ज करूंगा, अगर ये अपने वालदैन को एतमाद में लेते हैं ना इस जिंदगी का अच्छा फैसला करने में,
जब वालदैन तो क्या करते
हैं और मौतों से ना इनकी कामयाब लाइफ गुजर सकती थी, मैं ये अर्ज करूंगा।
क्या क्या दुआएं,
वालदैन की दुआएं और उनकी सपोर्ट चाहिए थी। जी
तो इसमें वैसे जफर मैं आपसे पूछूंगी, इनका क्या कसूर है इस पूरे वाकये में, इन्होंने क्या दुआ नहीं ली वालदैन की? जफर का फोन कट गया, मुझे पता है ऐसे सवाल आपको अक्सर सुनने को मिलते होंगे कि शायद
नहीं,
आप,
मैं समझ नहीं हाँ, पाई कि उन्होंने क्या कहा।
वो ये कह रहे हैं कि अगर शायद उनका मैं भी नहीं समझ पाई, लेकिन शायद इनका मकसद ये है कि क्योंकि मर्जी नहीं थी वालदैन की कि आप गाना सीखें, क्या मर्जी शामिल थी उनके गाना सीखने में?
देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इस दुनिया में आए हैं, अगर ऊपर वाले ने हमें सोचने की शक्ति दी है, और अगर हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, ऊपर वाला हर घर में तो नहीं जा सकता है ना, तो ऊपर वाला इसीलिए कहता है कि आपको जब मैंने इतनी शक्ति दी है तो आप उसका इस्तेमाल करें। और अगर आज मैं आप लोगों के सामने हूँ, शायद आज नहीं तो कल मैं गाना जरूर सीखूंगी और आप भी सुनेंगे एक दिन वो गाना मेरा।
और दूसरी बात ये
अभी
कि
मैं इस दुनिया में हूँ।
बिल्कुल सही है, मैं ये भी अपने सुनने वालों को बताना चाहती हूँ कि जो इंडिया में गाना हर माशरे का मुख्तलिफ वो होते हैं, टैबूज जो होते हैं, इंडिया में गाना टैबू नहीं है, इसलिए इनके माँ बाप को इससे कोई मुखालफत नहीं होगी कि ये सीखने जा रही हैं, लेकिन और उनकी दुआएं भी इनके साथ होंगी। तो हम वाकयात को जैसे कि ये यही बात ये कह रही हैं कि हमारा माशरा जो है ना वो खुद एक स्केच बना देता है हर लड़की के लिए, तैयार कर देता है कि यूं नहीं, उसने यूं नहीं किया तो यूं हो गया। ये जो कुछ हुआ इसमें किसी का कसूर नहीं था सिवाय उस आदमी के जो इंसानी एक वहशी था। और मुझे हैरत यह है कि उसके साथ एक लड़की भी थी, आपने बताया लक्ष्मी।
बिल्कुल, लेकिन मैं इसमें एक बात भी बहुत जरूरी है जो कि मैं कहीं भूल ना जाऊं, इसलिए मैं कहना भी चाहूंगी कि सिर्फ उस इंसान की ही नहीं, उस सोसाइटी की भी गलती है,
बिल्कुल
उस सोच की भी गलती है, क्योंकि उसने तो एक बार तेजाब डाला मेरे चेहरे पे, लेकिन अटैक होने के बाद सोसाइटी ने तो मुझे हर दिन तेजाब डाला मेरे चेहरे पे, मेरे मन पे हर दिन, तो वो क्या उसमें क्या मेरा कसूर था?
आपका तो किसी शुरू से लेकर आखिर तक आपका एक 15 साल की बच्ची मैं समझ सकती हूँ, अब आपकी बेटी 2.5 साल की हो गई है, कुछ ही दिन जाएंगे आपके 15 साल की बच्ची होगी, आप उसे कलेजे से लगा के रखेंगी, 15 साल की बच्ची तो एक छोटी सी बच्ची होती है, मैं तो
बिल्कुल इस पे... उसके एक सपने होते हैं, वो अपनी दुनिया में जीती है, वो कहीं ना कहीं जिसे कहा जाता है कि मतलब वो एक आती है अपने उस एक एज में आती है और उस पे कदम रखती है, जो कहते हैं ना 16 साल की उम्र, जो 15 से वो 16वें में जाती है, तो वो अपनी जिंदगी में एक नया कदम रखने जा रही होती है, और अचानक से उसकी खुशियां, और उसने जो कि 15 साल पहले वो मतलब अपनी जिंदगी जी ही नहीं, वो सिर्फ घर के अंदर ही अंदर रही।
बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा तारिक चुगताई साहब, बहुत मुख्तसर सिर्फ आपका सवाल चाहिए मुझे, चुनिया से है तारिक चुगताई जी, अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब।
वालेकुम अस्सलाम, तो लक्ष्मी बहन को मेरी तरफ से आदाब। तो पूछना मैं उनसे ये चाहता हूँ कि वो जिसने उनके ऊपर तेजाब फेंका, तो फिर उसके बाद क्या वो कानून की डेथ में आ गया फौरी तौर पर, या उसका हुआ क्या?
बहुत अच्छा सवाल है, यही मैं भी पूछना चाहती थी जी। लक्ष्मी सवाल आपने सुना?
बिल्कुल बिल्कुल, उनको सजा मिल चुकी है। मेरा मतलब मेरे लिए लक ये था कि 2009 में, क्योंकि जब तक लॉ नहीं आया था, उस लॉ जो लॉ नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद भी उस इंसान को 10 साल की सजा हुई और उस औरत को 7 साल की सजा हुई
जो साथ थी।
जी बिल्कुल।
अच्छा तो लक्ष्मी, ये तो बाद में तो मौत तक की सजा मिली, बॉम्बे में भी और पाकिस्तान में भी सजा सुनाई गई, मुझे पता नहीं अमल दोनों जगहों पे हुआ या नहीं। बॉम्बे में गालबन आर्म फोर्सेस में या नेवी में कोई एक बच्ची थी जिसके ऊपर तेजाब फेंका था, जिसके बाद
उनके लिए भी हमने बहुत कैंपेन किया था, बहुत काम किया था उनके लिए भी। मैं एक बात यही कहना चाहूंगी, आज वो इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन पर फिर भी वो है हमारे बीच में। दुख इस बात का है कि सजा सिर्फ सुनाई गई है, अभी हुई नहीं है, तो उनको भी, उनके परिवार जो क्रिमिनल है, उनके परिवार ने 1 महीने का समय मांगा था, लेकिन उसके बावजूद भी, समय पूरे सबूत देने के बाद भी, उनको 1 महीने का सबूत दिया गया, सबूत चाहिए था कि क्या मतलब वो अपने आप को निर्दोष साबित कर सके। तो अभी वो केस जाएगा, आगे और बढ़ेगा वो केस, फिर और आगे बढ़ेगा, अभी उसमें भी पता नहीं कितना समय लगेगा। तो कानून भी बहुत स्लो है, फास्ट ट्रैक कोर्ट है, पर लेकिन उसके बावजूद भी बहुत कानून स्लो है। कहीं ना कहीं हम खुद भी, मतलब हमारी सोसाइटी, हमारी सरकार, हमारा कानून, उसके वजह से भी बहुत क्राइम बढ़ रहे हैं,
क्योंकि कई दफा होता है कि सजा भी हो जाती है लेकिन अमल नहीं होता, पकड़ लेते हैं और कस्टडी में बैठे रहते हैं लोग, साल गुजर जाते हैं।
उनको बेल मिलती है। मैं एग्जांपल अपना ही दूंगी, जिस इंसान को अरेस्ट किया गया 4 दिन के बाद, और उसके बाद उसको 1 महीने के बाद बेल मिलती है, और 1 महीने के बाद सबसे पहला काम उसने शादी कर ली।
अच्छा,
उसको बेल मिला और उसने सबसे पहला काम शादी किया। अब आप समझ सकते हैं कि कानून और सोसाइटी कितनी कितनी अच्छी है, जो कि मैं गुनेगार साबित हो गई और वो निर्दोष साबित हो गया, ऐसा हुआ।
ये बात है, और ये कितने अफसोस की बात है कि एक बेगुनाह लड़की के लिए तो सोसाइटी खड़ी नहीं हुई, मगर एक मुजरिम को खुशी खुशी अपनी बेटी भी दे दी। मतलब आपने जो कहा, मैं इससे इत्तेफाक करती हूँ कि जब तक हम खुद आम लोग जो हैं, सिर्फ कानून नहीं, हम जब तक इनको मुजरिमों को मुजरिम नहीं कहेंगे, तब तक वो सही मानों में नहीं बनेंगे मुजरिम। अच्छा, हमारे साथ हैं बुखारी साहब मियांवाली से। जी बुखारी साहब, सलाम अलैकुम।
मैडम सलाम अलैकुम।
वालेकुम सलाम बुखारी साहब, क्या पूछेंगे?
मैडम सॉरी कहकर मैं एक बात करूंगा, ये दो जो आइटम है, तेजाब वाले और जना वाले, इनकी कोई सजा नहीं है।
मुझे आपका सवाल क्या दोबारा बोलिएगा? जिना वाले और तेजाब वाले जो दो आइटम है, क्या पूछा?
आपका जो सिलसिला है ना, तेजाब फेंकने वाला और जना वाला, इसका कोई हल नहीं है, इसकी कोई सजा नहीं है, जिसकी वजह से ये हौसला अफजाई होती है।
बिल्कुल सही। नहीं, आपको सॉरी कहने की जरूरत है बुखारी साहब।
देख लें,
ہاں میں سمجھ گئی اور میں آپ کے اس خیال سے بالکل اتفاق کرتی ہوں. آپ نے جس کو کہتے ہیں نا صحیح چیز پہ بالکل نظر ڈالی ہے. لیکن میں بخاری صاحب آپ سے کہوں گی کہ شاید یہ دونوں مسئلے ایسے ہیں کہ اگر ہمارے معاشرے کے اور آپ جیسے بے شمار زیادہ تر مرد جو ہیں باشعور ہیں, اگر آپ لوگ کھڑے ہو جائیں, آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی بہن, آپ کی بیٹی, آپ کی ماں, آپ کی بیوی, اگر جس طرح اس کی حفاظت آپ لوگ کرتے ہیں نا, اگر آپ معاشرے کی لڑکیوں کی ایسی حفاظت کریں اور ان کے مجرم کو سزا دیں, تو پھر شاید ایسے واقعات بند ہو سکتے ہیں. اچھا نور محمد صاحب ہیں چاغی بلوچستان سے. جی نور محمد صاحب, ہاں اچھا ٹھیک ہے نور محمد صاحب شکریہ. میں بلکہ یہ کہوں گی لکشمی یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ پھر آپ نے سیکھا گانا, کامیاب ہوئی ہیں نہیں آپ اپنے شوق میں, آپ تو ایک بہادر لڑکی ہیں, تو مجھے چاہے آپ نے سیکھا یا نہیں سیکھا, میں چاہوں گی کہ آج آپ ہمارے لیے کچھ گا کے سنائیں. جو آپ کا ایک شوق تھا یہ لاکھوں لوگ آپ کی آواز سن رہے ہیں, تو اپنی پسند کی کوئی چیز ہمیں سنائیے آپ.
بالکل میں سناؤں گی, اگر آپ بھی اپنی پسند مجھے بتا دے تو مجھے بھی کافی اچھا لگے گا.
میری ایک بہت پسندیدہ غالباً وہ بھجن ہے دنیا میں ہم نہیں بلکہ وہ اے مالک تیرے بندے ہم, مجھے بہت پسند ہے وہ والا, بہت ہر ایک مذہب کے لیے جیسے وہ صحیح لگتا ہے وہ ایک ایسی چیز ہے.
بالکل بالکل میں آج آپ کو یہی گانا سناتی ہوں. میں نے سیکھا تو ابھی تک نہیں ہے پر کوشش ضرور ہے میری کہ ضرور وہ وقت آئے گا اور میں ضرور سیکھوں گی بھی اور گاؤں گی بھی آپ سب لوگوں کے بیچ.
جی جی سنائیے پھر.
بالکل. اے مالک تیرے بندے ہم, ایسے ہو ہماری کرم, نیچے پر چلے تاکہ ہستے ہوئے نکلے دم, اے مالک تیرے بندے ہم. تھینک یو.
واہ بہت یہ مجھے بہت پسند ہے. اچھا اب آپ اپنی پسند کا سنائیے.
بالکل میری میری جو پسند ہے وہ شاید مطلب مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ سب کو وہ گانا بہت پسند ہے تو میں ضرور سناؤں گی. ہم کو ملی ہے آج گھڑیاں نصیب سے, جی بھر کے دیکھ لیجیے ہم کو قریب سے, پھر آپ کی نصیب بھی رات ہو نہ ہو شاید پھر نہ ملاقات ہو نہ ہو, لگ جا گلے.
واہ بہت پیاری, مجھے بھی بہت پسند ہے یہ غزل. بہت صحیح آپ نے کہا, یہ میں نے دیکھا ہماری دو اور ینگ لڑکیاں ہمارے ساتھ ہیں گلرخ اور سعدیہ, وہ بھی جھوم رہی تھیں کیونکہ یہ سبھی کے دل کو لگتا ہے. اچھا میں یہ بھی بتا دوں, آپ نے کہا کہ یہ جو ٹیڈ میں آپ نے تقریر کی تھی تو میں نے گلرخ پہ چھوڑا تھا, میں نے کہا تم اپنی پسند سے نکالو کوئی چیز نا جو تمہیں اچھی لگے اس پورے میں. تو میرا خیال ہے کہ جو لڑکیاں یا خواتین ہیں وہ محسوس کر سکتی ہیں آپ کے دل کی بات کو اس سے بہت زیادہ اچھی طرح جیسے جس طرح اور لوگ کر سکتے ہیں. تو
لیکن اس میں میں یہ بھی کہوں گی کہ مطلب صرف لڑکیاں ہی نہیں, میں ہر دن بہت سارے نئے نئے لوگوں سے ملتی ہوں, لڑکوں سے ملتی ہوں, تو مجھے خوشی اس بات کی بھی ہے کہ بہت سارے ایسے لڑکے بھی ہیں جو بڑے پیارے ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم مطلب ایکچولی میں لڑکیوں کو ریسپیکٹ چاہیے ہی نہیں, اگر چاہیے تو ایکویلٹی چاہیے, تبھی مطلب تبھی ریسپیکٹ مل پائے گی.
ہاں بالکل صحیح, یہ جو جینڈر کی بات ہوتی ہے نا, جب تک ہم ایکویلٹی نہیں لائیں گے, برابر نہیں لائیں گے جینڈر کو, تب تک ہمیشہ ایسے واقعات ہوتے رہیں گے. اچھا تھوڑا سا مجھے بتائیے کہ اس کے بعد ماڈلنگ آپ نے کی, آپ اینکر بنی مختصراً کیونکہ تھوڑا سا وقت باقی, یہ کیسے ہوا؟
بالکل میں 2009 کی ایک بہت ضروری بات یہ بتانا چاہوں گی کہ میں 2009 تک اپنا چہرہ ڈھک کے چلتی تھی, 2005 سے तो उस वक्त में मैंने ड्रेस डिजाइनिंग और ड्रेस मेकिंग, टेलरिंग, ये सब चीजें सीखी पापा के कहने पे. तो उसके बाद जब सीखा मैंने, तो फिर मैंने अपनी ड्रेसेस खुद बनानी स्टार्ट की. तो मुझे शीशे में देख के ये रियलाइज हुआ कि इस ड्रेस को पहनने का क्या फायदा जब आप अपना चेहरा ढक के चलते हो. तब मैंने फिर खुद से डिसीजन लिया कि नहीं, अब मैं अपना चेहरा ढक के नहीं चली. तो जैसे ही मैंने चेहरा अपना ओपन किया, तो लोगों के जो कमेंट थे, पीछे से तो बहुत खूबसूरत दिखती है, सामने से बहुत डरावनी दिखती है, बच्चे देख के डर जाएंगे, लोगों के ऐसे ऐसे कमेंट थे. पर मैं बहुत पॉजिटिव होती चली गई, क्योंकि मैं हमेशा उनको थैंक्स कहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे नेगेटिव नहीं किया, ये पॉजिटिव ही किया. क्योंकि ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे लेते हैं. और मैं कभी विक्टिम नहीं बनना चाहती थी, और कोई मुझे विक्टिमाइज करता था या कोई मुझे विक्टिम बोलता था, तो मैं एकदम स्टेट खड़े होके बोलती थी कि मैं विक्टिम नहीं हूँ, मैं बेचारी नहीं हूँ, आप मुझे बेचारा नहीं बोलेंगे. और उसके बाद मैं आगे बढ़ती चली गई, क्योंकि धीरे धीरे करके बहुत सारे चैलेंजेस मेरी जिंदगी में थे. 2012 में पापा की डेथ हो गई, फिर उसके बाद मैं कैंपेन से जुड़ी, और उसके बाद बहुत सारा काम किया साथ में. तो बहुत सारी चीजें होती चली गई, और लकली मुझे सबसे पहला एक टॉली जी है, उन्होंने मुझे मौका दिया. लैक्मी फैशन वीक दिल्ली में हुआ था वो, तो उस वक्त मैंने वहां पे वॉक किया, और मैं, वो मेरा फर्स्ट टाइम था, और मैं बस बढ़ती चली गई बढ़ती चली गई. फिर मैंने पीछे मुड़ के कुछ नहीं देखा. मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ हमारे हाथ में है, हम सब कुछ कर सकते हैं, बस हौसला चाहिए उस उड़ान के लिए.
दुरुस्त. अच्छा, मैं कुछ फेसबुक के मैसेजेस पढ़ना चाहती हूँ आपके लिए. हसन चंगवानी, आशिक खासखेली, मोहम्मद इरफान, फारूक भट्ट, और इन सब ने आपके लिए मोहब्बत से बहुत भेजे हैं मैसेजेस. का है कि हमारी बहन को हमारी तरफ से आप दुआ और नेक तमन्नाएं भेजिए. हसन चंगवानी ने ये लिखा है कि, फारूक भट्ट ने लिखा है कि सिर्फ कोई जानवर ही इतना बड़ा जुल्म कर सकता है किसी इंसान पर. और चंगवानी साहब ये कहते हैं कि ये वाकयात भारत में ज़्यादा होते हैं पाकिस्तान के मुकाबले में. मैं यहाँ पे, ये शायद इसका जवाब लक्ष्मी ना दे सके, मैं देना चाहती हूँ हसन चंगवानी साहब. ये वाकयात हर उस माशरे में होते हैं जहाँ पे एक तो मसावात ना हो और कानून की बालादस्ती ना हो. कानून बड़ी चीज़ है इन चीज़ों को रोकने में. पाकिस्तान में ये वाकयात बहुत होते हैं. एक तो आबादी का तनासुब आप देख लें, भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है. और दूसरे ये भी याद रखें कि रिपोर्टिंग कितनी होती है. असल बात यह है, हमने गुज़िश्ता दिनों एक प्रोग्राम किया था जिसमें आपको बताया था कि एक लड़की सिर्फ अपने माँ बाप से मिलने गई थी, तो उसकी नाक काट दी उसके शौहर ने और उसके सर के बाल शेव कर दिए, उसका सर गंजा कर दिया. तो ये जो है ना, ये वहशत, ये हर माशरे में मौजूद है. कानून को आगे आना होगा. अच्छा, थोड़ा सा वक्त बाकी है. मैं चाहूँगी, एक तो मैं चाहूँगी आपकी अम्मी की बात करना. हम औरतों की हिम्मत की बात कर रहे हैं, लक्ष्मी को दाद दे रहे हैं, मगर आप ये सोचिए कि आपकी माँ ने अपने शौहर की इंतकाल का दुख सहा, फिर आपका छोटा भाई भी मर गया 2 साल बाद उनके इंतकाल के उसी शौक में, और आपका भी उसको शौक था. फिर आपकी पूरी जिंदगी की स्ट्रगल, अब आप, उन्होंने कहीं जाके चैन का सांस लिया होगा आपको खुश देख के और अपनी बच्ची के साथ देख के. तो कैसी, क्या कहती हैं आप अपनी अम्मी के लिए?
मैं यही कहती हूँ कि हम हमेशा इंस्पायर होने के लिए बाहर जाते हैं. हम लोगों की अपनी हिम्मत के लिए हम बाहर लोगों को ढूंढते हैं कि हमें इससे हिम्मत मिले, उससे हिम्मत मिले. लेकिन अगर एक बार हम लोग बड़े आराम से अपनी फैमिली के साथ बैठ के उनके स्ट्रगल के बारे में सुने, तो हमें अपने स्ट्रगल से ज्यादा उनका स्ट्रगल नजर आएगा और ज्यादा हिम्मत मिलेगी. अगर आज मैं यहाँ खड़ी हूँ तो सिर्फ अपनी मम्मी के वजह से, क्योंकि मेरी मम्मी जब छोटी थी तो उन्होंने बहुत दुख झेला. उनके भी 1.5 साल में उनकी मम्मी की डेथ हो गई, फिर उसके बाद वो थोड़ी बड़ी हुई तो उनके पापा की डेथ हो गई, फिर उसके बाद जब उनकी 13 साल की उम्र में शादी हुई, फिर 14 साल की उम्र में मैं हो गई, फिर उसके बाद पापा अभी जब आया, 2005 की बात है जब मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ, तो 2.5 महीने वो नहा ही नहीं मेरी खातिर. फिर उसके बाद 2012 में मेरे मम्मी के ही सामने मेरे पापा की डेथ हुई, फिर 2014 में मेरे ही मम्मी के सामने उनकी उनकी बेटी की भी डेथ हो गई. तो बड़ा दुख हुआ ये सारी चीजों को देख.
मेरा ख्याल है कि लक्ष्मी, मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ तो बात बिल्कुल हुई नहीं, बहुत सी चीज़ें और हैं. तो अगले हफ्ते हम इसको जारी रखेंगे, इस बातचीत को, اسی وقت اسی پروگرام میں. ابھی میں آپ کو خدا حافظ کہتی ہوں, اور اگلے ہفتے میں آپ کی بیٹی پیہو کے بارے میں بھی جاننا چاہوں گی. تو سامعین, اس کے ساتھ ہی مجھے اور لکشمی کو اجازت دیجیے. آئندہ ہفتے آپ سے ہم دونوں کی دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.